सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे भारत और कनाडा के प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
धन्यवाद।
प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि हम जानते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं और आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। कितना आप इस यात्रा को महत्वपूर्ण मानते हैं दोनों देशों के रिश्तों के लिए?
जी, बहुत बड़ा मील का पत्थर है भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में, क्योंकि 2023 में हमने देखा जब प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार थी तो भारत और कनाडा के बीच के संबंध बहुत एक दुराव के स्तर पर पहुंच गए थे। तो प्रधानमंत्री कार्नी की यात्रा से न सिर्फ इन संबंधों को वापस पटरी पर लाया गया है बल्कि पिछले बहुत सारे जो दोनों देशों के बीच में जो आत्मीय संबंधों में जो रुकावटें आ रही थी उनको भी दूर करने की कोशिश की गई और ये कोशिश सफल भी रही है। साथ ही साथ ऐसे नए सेक्टर्स जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र है, क्लीन एनर्जी, यूरेनियम का अग्रीमेंट, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही कनाडा की जो ये उत्सुकता है कि भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, इन सभी में कनाडा भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदला है अमेरिका की ट्रंप सरकार की नीतियों के चलते, चीन की आक्रामक नीतियों के चलते, जो उठापटक की स्थिति है उसको देखते हुए भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनाडा को ये एहसास हुआ है कि एक मिडिल पावर के तौर पर उसे भारत के साथ आना चाहिए और उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए जिनको भारत करके चल रहा है। और एक विकसित भारत की जो परियोजना है 2047 तक भारत को विकसित और समृद्ध देश बनाने की, उसमें भी कैसे कनाडा भारत के साथ मिलकर काम कर सके, मुझे लगता है इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये विजिट रखी गई है और ये काफी सकारात्मक और रिजल्ट ओरिएंटेड विजिट मुझे लगता है। इसमें बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए।
जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेन सेक्टर्स हैं जिनमें हमारी साझेदारी बढ़ रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, कनाडा के लिए भी, और उन्होंने जो हमारा साझा व्यापार है उसको भी बढ़ाने के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है।
सो बहुत सारे एमओयूज पर प्रोफेसर मिश्रा आज सहमति हुई, एक्सचेंज हुए, क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कल्चरल कोऑपरेशन से जुड़े एमओयूज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े एमओयूज, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करी प्रधानमंत्री ने, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सचेंज हुए, एक पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सलेंस भारत में एस्टैब्लिश करने की भी बात हुई। क्या लगता है आपको, ये जो आपसी सहयोग है इसका एक बहुत ही रोचक पहलू ये भी रहा जब एक्सचेंज हुए डॉक्यूमेंट्स कि उनकी तरफ से जो 3 अधिकारी थे उनमें से 2 भारतीय मूल के थे। सो ये भी एक बहुत बड़ा सूचक है कि भारत और कनाडा के जो आपसी संबंध है वो कितने गहरे और आत्मीय है।
जी बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसको दिसंबर 2026 तक साकार करने की योजना है और प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही कि 2030 तक हमारे द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन तक ले जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 2 बातें बहुत स्पष्ट की। एक, पोटेंशियल को अनलॉक करना है। एक क्रिटिकल मिनरल्स का क्षेत्र है जो भारत के विकास के लिए, भारत को अभी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई दुनिया के तमाम देशों से चाहिए। अगर कनाडा वो सप्लाई कर सकता है भारत के लिए एक अनइंटरप्टेड, प्रधानमंत्री ने रेजिलियंट सप्लाई चेन की बात की, अगर ये सप्लाई होती है तो मुझे लगता है काफी हद तक हम 50 बिलियन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। साथ ही यूरेनियम की जो सप्लाई है उससे अपने आप 4.1 लाख करोड़ रुपए उसमें खर्च होने हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। क्लीन एनर्जी में चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो तमाम ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी के जो तमाम क्षेत्र हैं, उनमें भी सहयोग की संभावनाएं बहुत है। आपने बहुत एक दिलचस्प बात कही कि भारतीय मूल के लोग उन एमओयूज के आदान प्रदान में इन्वॉल्व थे। 18 लाख भारतीय जो कि 3% नागरिक हैं कनाडा के, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा का चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे एफएमसीजी हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंजीनियर्स हो या डॉक्टर्स हो, जिसे हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स हो या व्हाइट कॉलर वर्कर्स हो, दोनों ही क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जो डायस्पोरा है, जिसे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये भारत के कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, तो कल्चरल एम्बेसडर्स का सहयोग और उनका जो योगदान है भारत कनाडा के संबंधों को आगे बढ़ाने में, वो आगे आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण होगा। एक आपने और बात कही कि ये जो नए क्षेत्र हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। आज देखिए भारत की सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। भारत अब दूसरे देशों के साथ राजनयिक कूटनीतिक संबंध या आर्थिक संबंध सिर्फ इस बात पर नहीं बना रहा है कि हमें दुनिया के तमाम देशों को रीच आउट करना है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों को देख रहा है कि हमारी जो सेक्टर स्पेसिफिक जरूरतें हैं उनको कौन सा देश पूरा कर सकता है। और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कनाडा का भारत के साथ वापस आना और इस तरह से एक बहुत ही मुखर तौर पर सहयोग करना उन सेक्टर्स में जो बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के हैं, ये एक मील का पत्थर साबित होगा।
तो प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने कहा कि जो सेक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इतनी जो तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, एनर्जी हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
Today we are launching a strategic energy partnership with significant potential to expand bilateral energy trade. We've signed, as you've seen, a new critical minerals partnership spanning development, processing, and secure supply chains for clean energy, electric vehicles, and advanced manufacturing. We're deepening our cooperation in clean energy, expanding collaboration across wind, solar, and hydrogen. The government of India and Cameco have signed a major $2.6 billion uranium supply agreement supporting India's nuclear ambitions and our shared commitment to clean, reliable baseload power.
So, बहुत ही बल दिया है क्लीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी, जो पूरे विश्व के लिए, ना सिर्फ हमारे देशों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारे भविष्य के लिए। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू रहा आज की बातचीत का, वो था टेररिज्म, आतंकवाद, अलगाववाद, वो कैसे सबके लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है। भारत और कनाडा की जो पार्टनरशिप है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरिटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रोफेसर मिश्रा, वैश्विक शांति के लिए ये जो सहयोग की बात की गई है, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं।
देखिए, आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर के भारत की चिंताएं पिछले कई दशकों से बहुत ही गंभीर रही हैं, और दुनिया के तमाम मित्र देशों से भारत ने ये गुजारिश की है कि हमें आतंकवाद से लड़ने में न सिर्फ कूटनीतिक सहयोग की जरूरत है, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जरूरत है। अभी जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि आतंकवाद और अलगाववाद पर हम एक साथ हैं और सहमत हैं, ये एक बड़ा परिवर्तन है। अगर कनाडा जैसे देश भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि कनाडा फाइव आईज अलायंस का एक हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इन्वॉल्व हैं। उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग का अगर हम सही उपयोग करते हैं तो हम तमाम आतंकवादियों को न सिर्फ रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बल्कि एक प्रीएम्प्टिव एफर्ट भी लगा सकते हैं कि भारत में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा जा सके। इस संदर्भ में मुझे लगता है भारत और कनाडा के बीच में जो डिफेंस डायलॉग को शुरू करने की बात हुई है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पहले ही इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, अमेरिका के साथ हैं, तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कनाडा का भारत के साथ आना बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडो पैसिफिक का जहां तक आपने जिक्र किया, 2022 में कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया था और तब से वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक डायरेक्ट और मुखर रोल प्ले करना चाहते हैं। तो भारत ने जो ये बात कही कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कनाडा को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में कनाडा की उपस्थिति पहले भी रही है, बट अब अगर कनाडा इसमें सीधे तौर पर अपनी भूमिका अदा करना चाहता है तो ये भारत के लिए अच्छा है। एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए कनाडा की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उपस्थिति मुझे लगता है कि न सिर्फ स्वागत योग्य बल्कि ये महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करने के लिए तैयार है।
भारत कनाडा डिफेंस डायलॉग शुरू करने की जो बात आज हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू रहा आज की बातचीत का। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उसके बारे में क्या कहा।
रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेस बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
सो आज जो संबोधन था प्रधानमंत्री मार्क कार्ने का, उसमें उन्होंने जो G20 की मीटिंग हमने भारत में जो आयोजित की थी 2023 में, उसकी थीम उन्होंने रिकॉल की। ही सेड कि वो जो थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका जिक्र किया था अपने संबोधन में G20 के दौरान, उसको उन्होंने फिर से दोहराया कि वो कितनी रेलेवेंट है ताकि पूरा जो विश्व है वो मिलकर चुनौतियों का सामना करे। यह आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब मल्टीलैटरलिज्म खतरे में है दुनिया में?
देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अभी हाल के अपने कई वक्तव्यों में ये बात कही है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको बनाए रखने में मिडिल पावर्स की, जिसमें कनाडा और जापान जैसे देश आते हैं, राइजिंग पावर्स की जिसमें भारत की बड़ी भूमिका है, इनका बड़ा योगदान है। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात को दोहराना और उसको परिप्रेक्ष्य में लाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और कनाडा और दुनिया के तमाम देशों का फ्यूचर, उनका भविष्य, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, चाहे वो पर्यावरण और जन संसाधन को लेकर हो, या वो सामरिक और रक्षा क्षेत्रों में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की बात है, उन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं इस बात का मुजाहरा इस बात से भी हुआ कि भारत और कनाडा के बीच में जो MOU साइन हुए हैं उसमें हमें दिखता है कि क्लीन एनर्जी की भी बात है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनकी भी बात है, जो दुनिया के ऊपर जो संकट गहरा रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, प्रदूषण को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के, कैसे इन क्षेत्रों में जो चुनौतियां उनसे कैसे निपटा जाए, मुझे लगता है इस बात को ध्यान में रखकर ही इस बार तमाम जो समझौते हुए हैं उनको किया गया।
एक द्विपक्षीय समझौता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे हुआ, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम आपस में सहयोग करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम हो, सुपर कंप्यूटर्स या सेमीकंडक्टर्स, तो जो आइडियाज हैं वो ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदलते हैं। तो आपको लगता है कि अब ये इस तरह का सहयोग अब संभव हो पा रहा है? पहले बहुत सुरक्षित रखा जाता था अपनी टेक्नोलॉजी को, सो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कोऑपरेशन कितना जरूरी है?
देखिए, तकनीक को लेकर के चीन और अमेरिका दोनों ही प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। वो अपनी तकनीक को दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। भारत के अभी AI इम्पैक्ट समिट में भी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें ये बात कही गई कि कैसे अल्टरनेटिव सप्लाई चेन मैकेनिज्म को स्थापित किया जा सके कि चीन जैसे देश जो दूसरे देशों को न तकनीक देना चाहते हैं न संसाधन देना चाहते हैं, उससे कैसे जूझा जाए। कनाडा इन मामलों में क्रिटिकल मिनरल्स के मामले हों या EV व्हीकल्स हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, इन सभी क्षेत्रों में कनाडा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है वैश्विक स्तर पर। भारत के साथ अगर कनाडा तैयार है इन क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए तो मुझे लगता है ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। और कनाडा के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि भारत 1.4 बिलियन लोगों का देश है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। कनाडा आज अमेरिका के टैरिफ्स और ट्रंप की नीतियों से सीधे तौर पर प्रभावित है, उसके लिए एक बड़ी मार्केट का एक्सेस होना एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि गेम चेंजर साबित होगा। और भारत के लिए जहां उसे महाशक्तियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, कनाडा जैसे देश अगर इसमें साथ आते हैं तो भारत के लिए जो टेक्नोलॉजिकल जो सीलिंग है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर मिश्रा, आप आए और आपने भारत और कनाडा के बीच प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों के बारे में इतने विस्तार से हमें विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया।
धन्यवाद।
श्रोताओं, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। आज के सुर्खियों में कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।
सुर्खियों में